एग्ज़ाम है पिंकेश कुमार की आवाज़ में, बीए फर्स्ट ईयर राजनीतिक सिद्धांत चैप्टर नागरिकता। नागरिकता मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्यों को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। साधारण बोलचाल के अंतर्गत एक राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को नागरिक कहा जाता है, किंतु ऐसा कहना उचित नहीं है। एक राज्य में कुछ ऐसे विदेशी लोग भी होते हैं जो व्यापार या भ्रमण आदि के लिए एक विशेष देश में आए हुए होते हैं। इन विदेशियों को नागरिक नहीं कहा जा सकता है। नागरिक केवल ऐसे ही व्यक्तियों को कहा जा सकता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हों और उस राज्य के प्रति विशेष भक्ति का भाव रखते हैं। नागरिक की कुछ परिभाषाएं निम्न रूप से की गई हैं। अरस्तु के अनुसार एक नागरिक वह है जिसे राज्य के शासन में कुछ भाग प्राप्त हो और जो राज्य द्वारा प्रदान किए गए सम्मान का उपभोग करता हो। इसी प्रकार बटल ने नागरिक की परिभाषा करते हुए लिखा है, नागरिक समाज के वे सदस्य होते हैं जो कुछ विशेष कर्तव्यों द्वारा समाज से बंधे हों, जो समाज के नियंत्रण में रहते हों और जो समाज द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का निरंतर रूप से उपभोग करते हों। श्रीनिवास शास्त्री द्वारा की गई नागरिक की परिभाषा भी उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा है, नागरिक वह व्यक्ति है जो एक राज्य का सदस्य हो और जो समस्त समाज के उच्चतम नैतिक हित की वृद्धि के साधनों को बुद्धिमानी से समझकर राज्य की सीमा में ही अपने कर्तव्य पालन और अपने उच्चतम विकास के लिए प्रयत्नशील रहे। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि नागरिक शास्त्र में नागरिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से होता है जिन्हें समाज के द्वारा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हों। लेकिन सामाजिक जीवन के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के दो पक्ष हैं और अधिकारों को कर्तव्य से अलग नहीं किया जा सकता है, अतः कर्तव्य भी नागरिकता की सीमा में आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब राज्य नागरिकों को अधिकारों को कर्तव्य से अलग नहीं किया जा सकता है अतः कर्तव्य भी नागरिकता की सीमा में आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब राज्य नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है तो उसे व्यक्तित्व के विकास से तो विविध सुविधाएं प्रदान करता है, तो इन सब के बदले में व्यक्ति का भी कर्तव्य हो जाता है कि वह राज्य के प्रति कर्तव्यों का पालन करे और उसके प्रति विशेष भक्ति रखे। इस प्रकार नागरिकता व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों को दृढ़ बनाने वाली उस स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत राज्य के द्वारा व्यक्ति को नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और व्यक्ति राज्य के प्रति विशेष भक्ति रखता है। अतः नागरिक बनने के लिए 3 शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। पहला, राज्य की सदस्यता। नागरिक बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति राज्य का सदस्य हो। राज्य की सदस्यता नागरिकता की प्रथम शर्त है, इसके बिना नागरिकता अर्थ नहीं रखती है। दूसरा, राज्य द्वारा सामाजिक और नैतिक अधिकार प्रदान करना। जीवन का अधिकार जैसे कुछ सामान्य अधिकार तो राज्य में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे नागरिक और राजनीतिक अधिकार भी होते हैं जो राज्य के द्वारा केवल अपने नागरिकों को ही प्रदान किए जाते हैं। विचार और भाषण की स्वतंत्रता, सम्मेलन और संगठन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, मताधिकार आदि इस प्रकार के विशेष अधिकारों के ही उदाहरण हैं। तीसरा, राज्य के प्रति भक्ति। नागरिक के द्वारा राज्य के कानूनों का पालन करने के अतिरिक्त राज्य के प्रति विशेष भक्ति रखी जानी चाहिए। विशेष भक्ति का आशय यही है कि व्यक्ति राज्य के अस्तित्व की रक्षा और उसकी प्रगति के लिए सदैव ही सहर्ष प्रत्येक प्रकार का त्याग करने को तत्पर रहे। अब विदेशी की परिभाषा। नागरिक और नागरिकता को भली प्रकार से समझने के लिए नागरिक और विदेशी में भेद भली भांति समझ लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी देश में विदेशी तभी कहा जा सकता है जब वह कुछ समय के लिए किसी कार्यवश अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए आया हो। ये व्यक्ति व्यवहार करने, शिक्षा प्राप्त करने या भ्रमण के लिए दूसरे देशों में आते हैं और जितने दिनों तक अपना देश छोड़कर बाहर रहते हैं उतने दिनों तक उस राज्य में विदेशी कहे जाते हैं। इन विदेशियों को जानमाल की रक्षा और कुछ अन्य सामान्य सामाजिक अधिकार तो प्राप्त होते हैं, किंतु अन्य सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। इन अधिकारों की प्राप्ति के बदले विदेशियों को संबंधित देश के कानून का पूर्ण रूप से पालन करना होता है। विदेशी दो प्रकार के होते हैं, पहला मित्र देश के विदेशी और दूसरा शत्रु देश के विदेशी। पहले प्रकार के विदेशी वे होते हैं जिनमें देश की सरकार के साथ हमारी मैत्री हो, और दूसरी श्रेणी में वे विदेशी आते हैं जिनमें देश की सरकार हमारे देश की सरकार की शत्रुता की स्थिति में हो। विदेशियों का वर्गीकरण एक अन्य प्रकार से भी किया जा सकता है। एक, निवासी विदेशी। वे विदेशी हैं जो अपने देश का को छोड़कर किसी ऐसे देश में आ गए हों जहाँ वे सदा रहना चाहते हों और नागरिकता की शर्तों को पूरा कर रहे हों। नागरिकता प्राप्ति की शर्तों को पूरा कर देने के बाद प्रार्थना पत्र देकर ये विदेशी उस देश के नागरिक बन जाते हैं और उनमें तथा अन्य नागरिकों में समानता कोई अंतर नहीं रहता। अस्थायी विदेशी, ये लोग विदेशी कार्यवश
विशेष कार्यवश अपना देश छोड़कर अल्पकाल के लिए दूसरे देशों में आकर रहते हैं। सामान्यतः इनका उद्देश्य शिक्षा, भ्रमण या व्यापार होता है। तीसरा, राजदूत। विदेशियों का एक विशेष प्रकार अन्य देश के प्रतिनिधियों का होता है, जिन्हें राजदूत कहा जाता है। इनमें राजदूत के कार्यालय के कर्मचारी भी शामिल होते हैं। इन पर उस देश के ही कानून लागू होते हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, और इस वर्ग के विदेशियों को पत्र व्यवहार, यातायात आदि के संबंध में विशेष सुविधा और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। नागरिक और मतदाता। एक राज्य के अंतर्गत नागरिक और मतदाता में अंतर होता है, और एक राज्य के सभी नागरिक मतदाता नहीं होते हैं। मतदाता कौन हो यह राज्य के कानून पर निर्भर करता है, और किसी भी देश के अंतर्गत अवयस्क नागरिक मतदाता नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों में संपत्ति, धर्म, शिक्षा और लिंग के आधार पर भी कुछ नागरिकों को मताधिकार से वंचित रखा जाता है, लेकिन वर्तमान समय की प्रकृति इस प्रकार के भेदभाव और प्रतिबंधों के विरुद्ध है, और अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, फ्रांस, भारत आदि विश्व के अनेक राज्यों में भी वयस्क नागरिक मतदान के अधिकारी हैं। नागरिकों के प्रकार। मोटे तौर पर राज्य के सभी नागरिकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पहला जन्मजात नागरिक, दूसरा देशीयकरण के से प्राप्त नागरिकता। पहला जन्मजात नागरिक। जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में प्रमुख रूप से निम्नलिखित दो नियम हैं। पहले रक्त अथवा वंश का नियम। इस सिद्धांत के अंतर्गत नागरिकता रक्त अथवा वंश के आधार पर निर्धारित होती है, और बच्चे का जन्म चाहे किसी स्थान पर हो, बच्चे को उस राज्य की नागरिकता प्राप्त हो जाती है जिस राज्य के नागरिक उसके माता पिता हैं। उदाहरणार्थ अमेरिकी नागरिक का पुत्र अमेरिका का नागरिक होगा, चाहे उसका जन्म भारत या अन्य किसी राज्य में क्यों ना हो। प्राचीन काल में यूनान, रोम और एशियाई देशों में नागरिकता का निर्धारण इसी सिद्धांत के आधार पर होता था, और आज भी विश्व के अधिकांश देशों में यही सिद्धांत प्रचलित है। दूसरा, जन्म स्थान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत नागरिकता जन्म स्थान के आधार पर निर्धारित होती है, और एक बालक जिस देश की भूमि पर पैदा हो उसी देश का नागरिक समझा जाता है, चाहे उसके माता पिता किसी भी देश के नागरिक हों। वर्तमान समय में अर्जेंटीना में यही सिद्धांत प्रचलित है। इंग्लैंड, अमेरिका आदि राज्यों में नागरिकता प्रदान करने के संबंध में इन दोनों सिद्धांतों को मान्यता प्राप्त है। इन देशों के कानून के अनुसार उनकी भूमि पर जो बच्चा जन्म ले उस वह देश का नागरिक होगा। इसके अतिरिक्त इन देशों के नागरिकों की संतान हो, चाहे वह कहीं भी पैदा हो, उसे अपने माता पिता के देश की नागरिकता प्राप्त होगी। जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त प्रदान करने के संबंध में एक रूपता न होने के कारण व्यवहार में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी तो एक ही बालक दो देशों की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, जैसे अमेरिका के माता पिता की संतान अर्जेंटीना में जन्म ले, और कभी कभी एक बालक को किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त नहीं हो जाती, जैसे यदि अर्जेंटीना के नागरिकों का संतान स्वीडन में जन्म ले। इसी प्रकार की परिस्थितियों में वयस्क हो जाने पर व्यक्ति स्वयं अपनी नागरिकता का निर्णय कर लेता है। वास्तव में जन्मजात नागरिकता के इन दोनों सिद्धांतों में रक्त या वंश का सिद्धांत अधिक विवेकपूर्ण है। एक विशेष भूमि पर जन्म केवल संयोग का ही परिणाम होता है, और इसे नागरिकता का आधार नहीं बनाया जा सकता। एक विशेष भूमि पर जन्म लेने से ही बालक के मन में उस भूमि के प्रति किसी प्रकार की भक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती। देशीयकरण। देशीयकरण एक वैधानिक प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत कुछ निश्चित शर्तें पूरी कर लेने पर व्यक्ति को उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। गार्डनर के शब्दों में देशीयकरण का तात्पर्य विदेशी को नागरिकता प्रदान करने की किसी भी पद्धति से है। साधारणतया तो एक राज्य में दोनों ही प्रकार के नागरिकों को समान स्थिति प्राप्त होती है, लेकिन कुछ देशों में जन्मजात नागरिकों को देशीयकरण से हुए नागरिकों की अपेक्षा विशेष स्थिति प्राप्त होती है। भारत में तो दोनों प्रकार के नागरिकों में कोई भेद नहीं किया जाता, लेकिन अमेरिका में जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की योग्यता रखते हैं। देशीयकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया। देशीयकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया और शर्तें संबंधित देश के विधान और कानून द्वारा निर्भर होती है, लेकिन इस प्रक्रिया की कुछ सामान्य बातें हैं। सभी देशों में देशीयकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ संबंधित व्यक्ति के उस आवेदन पत्र से होता है, जिसमें उसके द्वारा उस देश की नागरिकता प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की जाती है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए सामान्यता उससे निम्न शर्त पूरी करनी होती है। ए, अपनी पहले की नागरिकता का परित्याग करना। बी, नए राज्य में संबंधित राज्य के संविधान या कानून द्वारा निर्धारित अवधि तक निवास करना। सी, नए राज्य के प्रति राजभक्ति और निष्ठा की शपथ लेना। डी, संविधान के प्रति विश्वास और निष्ठा व्यक्त करना। ई, उस देश की राष्ट्रभाषा का ज्ञान प्राप्त करना। और एफ, व्यक्ति के पास भरण पोषण के साधनों का होना। नागरिकता प्राप्त करने के लिए इनमें से प्रथम चार शर्तें पूरी करना सभी देशों में आवश्यक है। अन्य शर्तों के प्रसंग में विभिन्न देशों में अलग अलग व्यवस्था है। नागरिकता की प्राप्ति और अपहरण। नागरिकता की प्राप्ति। प्रमुख रूप से निम्न आधारों पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला, विवाह। किसी देश की स्त्री किसी दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर ले तो उस स्त्री को अपने पति के देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अधिकांश देशों में तो यही नियम प्रचलित है, किंतु जापान में ऐसा नियम प्रचलित है कि यदि किसी अन्य देश का पुरुष जापान की नारी से विवाह कर ले तो पुरुष को भी जापान की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। दूसरा, निश्चित निवास। सामान्यतः सभी देशों में ऐसा नियम है कि राज्य के अंतर्गत निश्चित अवधि तक निवास करने पर विदेशी अपने पहले देश की नागरिकता छोड़कर वहाँ की नागरिकता ग्रहण करने के लिए आवेदन पत्र दें तो उसे वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यह अवधि भिन्न देशों में 2 वर्षों से 10 वर्ष तक है। अमेरिका, नीदरलैंड, जापान और हंगरी में यह अवधि 5 वर्ष, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड और अर्जेंटीना में 2 वर्ष और स्वीडन में 3 वर्ष है। तीसरा, सरकारी सेवा। अनेक देशों में एक निश्चित अवधि तक राज्य की सेवा में रहने की दशा में व्यक्ति को उस देश की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। चौथा, संपत्ति खरीदना। दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों जैसे पेरू और मैक्सिको में यह कानून है कि यदि कोई व्यक्ति वहाँ कुछ संपत्ति खरीद ले तो उसे वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। पाँचवा, विजय। यदि किसी राज्य का कोई भाग किसी अन्य राज्य के द्वारा जीत लिया जाए अथवा एक राज्य अपनी इच्छा से अपना कुछ भाग अन्य किसी राज्य को दे दे तो दोनों ही स्थितियों में उस भाग के नागरिक को उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है जिसमें वह भाग मिलाया जाता है। छठा, दोबारा नागरिकता की प्राप्ति। यदि किसी देश का कोई नागरिक अपनी नागरिकता छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता अपना लेता है तो उसे दूसरे देश का नागरिक समझा जाएगा, परंतु यदि वह अपने पहले देश की नागरिकता फिर से प्राप्त करना चाहे तो कुछ शर्तें पूरी कर लेने पर उसे नागरिकता प्राप्त हो सकती है। सातवा, गोद लेने से। यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी बच्चे को गोद ले ले तो उस विदेशी बच्चे को अपने धर्म पिता या धर्म माता के देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ऐसी प्रथा प्रायः सभी देशों में है। आठवां, विद्वानों को। कुछ देशों में विदेशी विद्वानों को नागरिकता प्राप्त करने में विशेष सुविधाएं दी जाती है। फ्रांस में ऐसी व्यवस्था है। नागरिकता का अपहरण या समाप्ति। नागरिकता की प्राप्ति के समान ही उसका अपहरण भी संभव है। नागरिकता के अपहरण के संबंध में समानता विभिन्न देशों में निम्नलिखित विधियां प्रचलित हैं। पहला, नागरिकता का त्याग। अनेक राज्य अपने नागरिकों को अधिकार देते हैं कि यदि वे स्वेच्छा से वहाँ की नागरिकता छोड़ना और दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो वे सरकार की आज्ञा से ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए नागरिक को सरकार के पास प्रार्थना पत्र देना होता है। जर्मनी में ऐसा ही नियम है। दूसरा, विवाह। विवाह भी नागरिकता के अपहरण का एक साधन है। जब एक देश की स्त्री किसी दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर लेती है तो वह स्त्री अपने पहले वाले देश की नागरिकता खो देती है। तीसरा, विदेशों से सम्मान प्राप्ति। अनेक राज्यों में ऐसा नियम प्रचलित है कि वहाँ का नागरिक अनुमति प्राप्त किए बिना किसी अन्य देश के सरकारी नौकरी नहीं कर सकता और न ही कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है। जब नागरिक अन्य देशों में शासकीय सेवा या सम्मान प्राप्त कर लेता है तो यह उसकी नागरिकता के अंत का कारण बन जाती है। चौथा, लंबे समय तक अनुपस्थिति। अपने देश की सरकार की अनुमति के बिना लंबे समय तक देश में अनुपस्थित रहने पर भी नागरिकता का अंत हो जाता है। पाँचवा, देशद्रोह या सेना से भागना। यदि किसी व्यक्ति द्वारा देशद्रोह, सेना से भागना या अन्य कोई गंभीर अपराध किया जाए तो यह अपराध भी नागरिकता के अपहरण का कारण बन जाती है। इन सब के अतिरिक्त एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो पहले राज्य की नागरिकता स्वतः अंत हो जाती है।